रायशा अभी तक मंथन और साक्षी के घर पर ही थी। कल रात देर से आने की वजह से रायशा दोपहर तक सो रही थी। जब वो उठी तो मंथन घर पर अकेला था। साक्षी के वहां ना होने पर मंथन ने रायशा को वॉर्न किया कि वो आगे से अनुष्का के खिलाफ कुछ ना कहे। वो रायशा से काफी रूडली बात कर रहा था ताकि वो वहां से चली जाए, लेकिन आज रायशा को उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। वो मंथन के पास गई और उसे सॉरी बोला। रायशा ने मंथन को सॉरी कहकर आगे कहा, मुझे नहीं पता था आप दोनों रिलेशनशिप में थे। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब सब मुझे उससे कंपेयर करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। रायशा की बात सुनकर मंथन ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और जवाब में कहा, वो तुम्हें इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि तुम अनु की कॉपी करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा बिहेवियर देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम उसे इमिटेट कर रही हो। मंथन की कही बात सच थी। रायशा अनुष्का के हिसाब से चलना, बोलना और बाकी चीजें इसीलिए सीख रही थी क्योंकि डायरेक्टर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। किसी और ने इस बात को नहीं पहचाना था, लेकिन मंथन ने तुरंत पकड़ लिया। इस पर रायशा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसकी तरह? रायशा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मंथन ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं उसे इतना प्यार करता था कि उसके बिना बोले ही मुझे पता चल जाता था। ये गुस्सा आने पर आंखें छोटी करके बात करना, बार बार कमर पर हाथ रखना, बोलते वक्त अपने बालों को कानों के पीछे करना, खाते हुए इधर उधर देखना, बार बार अपने एक हाथ से दूसरी आम को सहलाना, इतना काफी है या आगे और भी बताऊं? मंथन ने रायशा की हर छोटी चीज के बारे में बता दिया था, जिसके बाद वो आंखें बड़ी करके हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। रायशा ने इधर इधर देखते हुए कहा, इतनी छोटी चीज तो किसी ने नोटिस नहीं की जितना तुमने। मैं नहीं पूछूंगी कि तुम्हें कैसे पता, पर तुम क्या उसकी हर छोटी चीज को नोटिस करते थे? हाँ, मंथन ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा। तुम्हें पता है हमारा रिलेशन 4 साल पुराना था। जब हम मिले थे तब उसने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत ही की थी और एक एड शूटिंग के लिए दिल्ली आई हुई थी। तब हम दोनों मिले थे। मुझे नहीं पता था वो एक्ट्रेस है। पहली बार उसे दिल्ली की इंटरनेशनल लाइब्रेरी में मिला था। वहां वो अपनी बहन के लिए कुछ बुक्स लेने आई थी। मुझे लगा वो किताबें उसने अपने लिए चुनी है और मैंने उसे बहुत इंटेलेक्चुअल समझा था। उसके हाथ में बुक्स देखकर ही मैं इम्प्रेस हो गया था, जबकि उसने मुझे बताया था कि उसे पहली नज़र में ही मुझ पर क्रश हो गया था। बताते हुए मंथन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मंथन और अनु की पहली मुलाकात के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। रायशा काफी इंटरेस्ट के साथ सुनने लगी। वो उसके पास बैठते हुए बोली, अच्छा आप दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया था? जरूर अनुष्का ने ही किया होगा क्योंकि वो काफी बोल्ड थी। मंथन ने उसके बात पर हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने रायशा की तरफ देखा जो बिल्कुल अनु की तरह बैठी थी। इसका एक पैर जमीन पर तो दूसरा सोफे पर था। उसने अपने हाथ से चेहरे को थाम रखा था। मंथन ने सिर हिलाकर कहा, खुद की तरह बिहेव किया करो ताकि जेन्युइन लगो। मुझे फेक लोगों से सख्त चिढ़ है। रायशा की हरकतें देखकर मंथन को गुस्सा आ गया और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रायशा मासूमियत से बोली, लेकिन मेरे बैठने का तरीका यही है। जरूरी थोड़ी ना है मैं हर चीज में उसे इमिटेट कर रही हूं। मंथन ने एक बार फिर रायशा के साथ काफी रूखे तरीके से बात की थी, लेकिन इस बार उसे मंथन पर गुस्सा नहीं आया। वो खोई हुई नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। रायशा ने धीरे से कहा, कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसकी हर एक चीज को इतना नोटिस करे? जो लोग मुझे अनुष्का सिंह ओब्रॉय की कॉपी करने को कह रहे थे, इतनी छोटी चीजों को वो तक नहीं पकड़ पाए। रायशा मंथन से पहली बार इम्प्रेस हुई थी, वो भी उसके बिहेवियर के चलते नहीं, उसके अनुष्का के प्यार के चलते। वो भी अपनी लाइफ में किसी इसी तरह के लड़के को चाहती थी, इसीलिए मंथन उसे काफी इम्प्रेसिव लगा। आयु ने आरव को हॉस्पिटल जाने के लिए मना लिया था। छवि सिंघानिया की रिपोर्ट आने ही वाली थी। आरव और आयु हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन वो दोनों नीचे पहुंचे तो उन्हें गौरवी जी मिल गई थी। आरव गौरवी जी के सामने छवि सिंघानिया के बारे में बताना नहीं चाहता था। गौरवी जी आरव को कुछ पूछती उससे पहले उसने खुद ही सब बताते हुए कहा, डॉक्टर मानसी का कॉल आया था, आयु की अपॉइंटमेंट थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों टाइम से पहुंच जाना। आज हम युवानी के घर चल रहे हैं। पहली बार कबीर ने अपने लिए कुछ कहा है तो मैं नहीं चाहती कि किसी चीज की कमी हो, गौरवी जी ने कहा, जिस पर आरव और आयु ने हामी भर दी। गौरवी जो को बाय बोलने के बाद आरव और आयु गाड़ी में थे। आरव का हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आयु की वजह से उसे जाना पड़ रहा था। आरव का इस वजह से मूड उखड़ा हुआ था। गाड़ी ड्राइव करते हुए आरव ने कहा, मैं सिर्फ अयान और तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, ये मत समझना कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। हाँ हाँ ठीक है, ये बात तुम मुझे पिछले 1 घंटे में 10 बार बोल चुके हो। प्यार करने लायक वो वैसे भी नहीं है, लेकिन एक बीमार इंसान से हम नफरत नहीं कर सकते, आयु ने जवाब दिया। आरव को गाड़ी स्टार्ट किए हुए कुछ ही देर ही हुई होगी कि आयु को सिकनेस फील होने लगी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अब आयु को समझ आ गया था कि मानसी ने उसे प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए क्यों कहा था। आरव का सारा ध्यान ड्राइव करने में था, तभी आयु ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ ही देर में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। कम ऑन आयु, यहाँ मुझे ड्राइविंग करनी है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, आरव ने आईज रोल करते हुए कहा और फिर एक नजर आयु पर डाली तो उसकी हालत खराब हो रही थी। आरव ने जल्दी से गाड़ी रोकी और कार की विंडो ओपन की। कुछ ही देर में आयु का चेहरा लाल हो गया था। आरव ने उसे पानी पिलाया और फिर उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालने दूंगा। ये क्या हो रहा है तुम्हें? मैंने मना किया था हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो? तुम्हें बस अपनी जिद करनी होती है मिसेस खुराना। हम किसी हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। आयु की तबीयत खराब होने पर आरव उसे डांटने लगा और अब उसने हॉस्पिटल जाने का इरादा बदल दिया था, तो वहीं अयान रिपोर्ट्स आने के बाद भी उन्हें खोलकर नहीं देख रहा था। उसे अब भी यही उम्मीद थी कि आरव उसके पास आएगा। आरव आयु के साथ छवि सिंघानिया की रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में आयु की तबीयत खराब हो गई तो आरव को गुस्सा आ गया और वो हॉस्पिटल जाने के बजाय आयु को डांटने लगा। आयु के पास कुछ मेडिसिन थे, उसने उन्हें लिया और उन्हें लेने के बाद उसे अच्छा महसूस होने लगा। जब आयु की तबीयत ठीक देखी तब आरव ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मैं गाड़ी खुराना मेंशन की तरफ ले रहा हूँ, हम वापस घर जा रहे हैं। आयु ने झट से आरव का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, अरे प्लीज ऐसा मत करो, हम लोग बीच रास्ते में हैं, हॉस्पिटल जाओ या घर एक जितना ही टाइम लगता है, मैं ठीक हूँ, चलो ना हॉस्पिटल चलते हैं। आयु कब से हॉस्पिटल हॉस्पिटल की रट लगा रखी थी। आरव ने इरिटेट होते हुए कहा, अब तुमने अपने मुंह से एक बार भी हॉस्पिटल शब्द बोला है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हम घर जा रहे हैं एंड इट्स फाइनल। लेकिन मैंने अयान को प्रॉमिस किया था, वो हमारा वेट कर रहा होगा, आयु ने प्लीडिंग वे में कहा।
वेट कर रहे तो थोड़ा वेट और कर लेगा, तुम्हें घर छोड़कर मैं अकेले हॉस्पिटल चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें लेकर कहीं नहीं जाने वाला, आरव ने जवाब दिया। आयु आरव का हाथ पकड़कर बैठी थी और उसे गाड़ी स्टार्ट करने नहीं दे रही थी। आयु ने जल्दी से आरव के गाल पर किस करके सॉफ्टली कहा, प्लीज मिस्टर खुराना, मान जाओ ना, सिर्फ एक बार मान लो, आई प्रॉमिस आगे से कुछ नहीं मांगूंगी। मैं तुम्हारा ये डायलॉग सुन सुनकर बोर हो गया हूँ, सिर्फ एक बात मान लो, आगे से कुछ नहीं मांगूंगी, बस ये बोल बोलकर पता नहीं तुम मुझसे क्या कुछ नहीं मांगती रहती, आरव ने आईज रोल करके कहा। आयु उसे छोड़ नहीं रही थी तो आरव बोला, अपना हाथ हटाओ मिसेस खुराना, हॉस्पिटल ही ले रहा हूँ, डॉक्टर मानसी से एक बार फिर से चेकअप करवा लेना। आरव ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी और गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले रहा था। आयु ने फिर जवाब में कहा, मुझे चेकअप की ज़रूरत नहीं है, मानसी ने कहा था कि मुझे खुली हवा की ज़रूरत है और गाड़ी में थोड़ा सफोकेशन फील होने की वजह से दम घुटने लगा। हाँ तो आज से तुम्हारी ट्रैवलिंग भी बंद, आरव बोला। वो हर उस चीज़ से आयु को दूर रख रहा था जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकती थी। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। अयान को उम्मीद नहीं थी कि आरव आएगा, लेकिन उसे देखते ही अयान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आरव को देखते ही धीरे से थैंक यू कहा। आरव ने जवाब में सिर हिला दिया, फिर उसकी नज़र साक्षी पर गई जो वहां पर ही बैठी थी। आरव ने साक्षी की तरफ देखकर कहा, अपनी गर्लफ्रेंड को पहले ही बुला रखा है तो मुझे परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि भाई का काम गर्लफ्रेंड नहीं कर सकती ना आरव खुराना, तुम भी तो यहाँ अपनी वाइफ को लेकर आए हो, अकेले भी तो आ सकते थे ना, साक्षी ने उसे परेशान करने के लिए कहा। साक्षी की बात सुनकर आरव ने ईविल स्माइल देते हुए आयु की तरफ देखा जो आरव से नज़रें चुराती हुई इधर उधर देख रही थी। आरव ने साक्षी से जवाब में कहा, मैं इसे लेकर नहीं आ रहा था, ये ज़बरदस्ती आ गई, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बताओ रिपोर्ट्स में क्या है। अयान ने उसकी बात पर हामी भरी। वो तीनों अयान की चेयर के इर्द गिर्द बैठे थे। आयु अयान की चेयर के बिल्कुल करीब बैठी थी और वो दोनों ही रिपोर्ट्स देख रहे थे। पहले ब्रेन रिपोर्ट थी, जिसे देखने के बाद अयान और आयु दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ गया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आयु ने अयान के हाथ पर अपना हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, ऐसा केस 3-4 महीने पहले भी आया था, पेशेंट की जान बच गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था, अयान ने नम आंखों से कहा। उनकी बातें सुनकर आरव और साक्षी समझ गए थे कि मामला सच में सीरियस है। आरव ने अयान की तरफ देखकर पूछा, क्या आया है रिपोर्ट्स में? वो खुद को काम दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि आरव भी परेशान है। आयु ने आरव की बात का जवाब देते हुए कहा, उनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में क्लॉट्स बन रहे हैं, अब तक 4 क्लॉट्स बन चुके हैं और ऐसे केसेस में ये प्रोसेस चलती रहती है और क्लॉट्स बनते जाते हैं, हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी होगी। अयान इमोशनल था इसलिए उसकी आंखें नम होने लगी थी, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था तो अयान उठकर बाहर जाने लगा। आयु ने अयान का हाथ पकड़कर उसे रोका। अयान आयु के गले लग गया। आयु ने उसे सहलाते हुए कहा, हम कर लेंगे, हमने पहले भी किया है, तुम तो हर सिचुएशन संभाल सकते हो, आरिफ के भी तुमने सक्सेसफुल सर्जरी की थी,
तो मिसेस सिंघानिया की भी कर लोगे। उन्होंने बार बार बताने की कोशिश की कि वो ठीक नहीं है, उन्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था और मैं उन्हें इग्नोर करता रहा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, अयान ने सुबकते हुए कहा। अयान और आयु को हक करते देखकर आरव ने उन दोनों की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, साक्षी लगता है हम दोनों यहाँ पर गलत ही आ गए, ये दोनों खुद ही रिपोर्ट देख लेते और एक दूसरे को संभाल लेते। आरव की बात सुनकर अयान जल्दी से आयु से अलग हुआ। आरव उन दोनों को तिरछी निगाहों से देख रहा था। उनके अलग होते ही आरव ने सिर हिलाकर कहा, उनके कफ में ब्लड निकल रहा था, उसकी रिपोर्ट भी आई होगी, उसे भी पढ़ लो। अयान की अब दूसरी रिपोर्ट खोलने की हिम्मत नहीं थी तो आयु ने उसे खोला और उसे पढ़कर धीरे से कहा, फर्स्ट स्टेज लंग कैंसर है। जैसा कि आयु ने कहा था, छवि सिंघानिया बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार, और इस बार वो कोई दिखावा नहीं कर रही थी। दोनों रिपोर्ट्स देखने के बाद आरव के चेहरे के भाव सर्द थे। वो कुछ नहीं बोला और वहां से बाहर चला गया। वो अपने इमोशंस उनके सामने शो नहीं करना चाहता था। आरव के बाहर निकलते ही अयान ने आयु से कहा, भाई के पास जाओ, उन्हें इस वक्त किसी की जरूरत है, वो नहीं दिखाएंगे कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और तेज कदमों से चलकर आरव के पीछे जाने लगी। उसने देखा आरव छवि सिंघानिया के रूम में जा रहा है। तुम्हें अपनी मॉम के साथ टाइम बिता लेना चाहिए आरव, उनकी मेडिकल कंडीशन देखकर लगता नहीं कि वो ज्यादा जी पाएंगी, ये गिले शिकवे यहीं पर रह जाएंगे, आयु ने खुद से कहा। वो वहां से जाने को हुई तभी उसे डॉक्टर मानसी दिखी। आयु को देखते ही मानसी तुरंत उसके पास आकर बोली, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, रिसेप्शन से पता चला कि तुम मैटरनिटी लीव पर हो, हमें बात कर लेनी चाहिए आयु, तुम्हारी रिपोर्ट में मुझसे एक बहुत जरूरी चीज छूट गई थी। बोलते हुए मानसी के एक्सप्रेशंस काफी सीरियस थे। पहले ही छवि सिंघानिया की रिपोर्ट्स को लेकर आयु परेशान थी, ऊपर से वो एक और बैड न्यूज नहीं सुनना चाहती थी। ये उसके पास अच्छा मौका था जब आरव उसके आसपास नहीं था। आयु तुरंत मानसी के साथ उसके केबिन में चली गई। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी क्योंकि मानसी के एक्सप्रेशंस देखकर साफ था कि वो कोई अच्छी खबर तो सुनने वाली है नहीं।